हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वही ही मल्लिका भी ऑफिस आ गई थी। अमित आज ऑफिस नहीं आया था। मल्लिका अच्छी तरह से जानती थी अमित कहाँ गया हुआ। अमित कहीं और नहीं बल्कि उस लड़की को लेकर उसके घर गया हुआ था। जल्दी ही अमित उस लड़की को लेकर झोपड़पट्टी में पहुंच चुका था। हालांकि उसकी बड़ी सी गाड़ी झोपड़पट्टी में अंदर नहीं जा रही थी, इसलिए अमित ने अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क कर उन झोपड़पट्टी में उस लड़की के साथ पैदल ही चल पड़ा था। रास्ते में उसे कितने ही गरीब गुर्बत दिखाई दे रहे थे। कोई रो रहा था, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे थे, कोई रो रहा था, कोई खेल रहा था, कोई हंस रहा था। तो इस तरह से देखते दिखाते वो जल्दी ही एक बहुत ही बुरी हालत में एक झोपड़ी के सामने जाकर खड़े हो गए थे। तब उस लड़की ने अमित की ओर मुंह करते हुए कहा था कि यही वो झोपड़ी है जिसमें मैं रहा करती थी। उस लड़की की बात सुनकर उसने उस झोपड़ी में एक बोरी टंगी हुई थी। वहाँ पर पर्दे के नाम पर अगर कुछ था तो एक बोरी थी जो भी काफ़ी मैली कुलची सी हो गई थी, और वो झोपड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई थी, और उसमें दरवाज़ा तक नहीं था, और दरवाज़े के नाम पर अगर वहाँ कुछ था तो वो थी एक बोरी। तो अमित ने अपने हाथों से वो बोरी हटाना ज़रूरी नहीं समझा था, और उसने उस लड़की को इशारा किया जो जाकर अपने माँ बाप को यही बाहर बुलाकर लेकर आओ। अमित की बात सुनकर वो लड़की हैरान हो गई थी। वो बोली थी, नहीं नहीं साहब, आपके अंदर जाकर ही मेरे माँ बाप से बात करनी होगी, क्योंकि ऐसे तो मोहल्ले वाले सारी बातें सुन लेंगे और सबके सब मुझसे जलने लगेंगे और मुझे बद्दुआ देने शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है, उस लड़की ने अपनी लैंग्वेज में कहा था। अमित उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया था, लेकिन अब उस लड़की ने कहा था तो उसे अंदर जाना ही था। जल्दी वो बोरी उठाकर हटाकर जैसे अंदर गया तो अंदर की हालत देखकर हैरान हो गया था। उसने देखा आधी नंगी सी हालत में सामने एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी, साथ ही साथ बूढ़े बीमार आदमी और उसके साथ छोटे छोटे दो बच्चे। उन्हें देखकर अमित काफ़ी ज़्यादा घिन से भर गया था, क्योंकि उनकी ओर देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही थी। उसे बहुत ही गंदा गंदा सा लग रहा था। लेकिन जल्दी ही जब उस लड़की ने अंदर जाकर कहा, माँ बाबूजी, माँ बाबूजी, जैसे उसे लड़की ने ये कहा, वो लोग हैरान होकर अपनी बेटी को देखने लगे थे, क्योंकि उनकी बेटी साफ़ सुथरे कपड़ों में खड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उनकी बेटी आज घर नहीं आई थी, जिसकी वजह से उनके घर में आज खाना भी नहीं पका था। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ बार बार हैरान हो रही थी, क्योंकि आज तक तो वो अपनी बेटी के गोरे रंग को छुपाती हुई आई थी, और अचानक से उसका गोरा रंग सबके सामने था। अपनी बेटी को सामने पाकर जल्दी उसकी माँ खड़ी हो गई थी, और अपनी बेटी को गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी बेटी ने अपना हाथ उसकी ओर दिखाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया था, और बोली थी, नहीं नहीं माँ, मैं तुझे गले नहीं लग सकती हूँ। अगर तूने मुझे गले लगाया तो तेरे मैल कुलचे कपड़ों से मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। मैंने आज ही तो नए और साफ धुले कपड़े पहने हैं। उस लड़की की बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उसकी बेटी को अपनी खूबसूरती का एहसास हो चुका था, और खूबसूरती का गुमान अगर किसी के सर पर सर चढ़कर बोलता है तो सामने वाले इंसान को इंसान नहीं समझता है। ये बात उसकी माँ अच्छी तरह से जानती थी। तब उसके पिताजी ने कहा था, लेकिन बेटी तू कहाँ चली गई थी, और तू खाना लेकर क्यों नहीं आई, और ये सब क्या है, और ये आज ये साहब कौन है? तब उस लड़की ने अपने पिता से कहा था, मैं तो रोज़ की तरह भीख मांग रही थी, लेकिन फिर इन साहब की नज़र मुझे गरीब पर पड़ गई, और उनकी दया दृष्टि से इन्होंने मुझे साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए हैं, और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं काली नहीं थी, और मुझे मेरी माँ काली बनाकर रखा करती थी। और तब वो अपनी माँ की ओर उसके कंधों को पकड़ते हुए बोलने लगी थी, आखिर क्यों, क्या आपने मेरे साथ ऐसा, जब मैं बचपन से इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी तो आपने मेरी खूबसूरती क्यों छुपाई, क्यों मुझे लोगों की नज़रों में नीचा गिराया, क्यों 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 सब, जब सब लोग मेरा काली काली काकर मजाक उड़ाया करते थे तब आपने क्यों जवाब नहीं दिया कि मेरी बेटी काली नहीं है, मेरी बेटी खूबसूरत है, ऐसा क्यों किया आपने, बोलो जवाब दो। वो लड़की बड़े ही गुस्से से अपनी माँ के कंधों को झटक रही थी। उससे उसकी माँ को दर्द भी होने लगा था, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस इस वक्त अपनी माँ से ये जानना था कि अगर वो सुंदर ब्यूटीफुल थी तो फिर उसकी माँ ने उसे बदसूरत क्यों बनाकर रखा हुआ था। तब उसके बाद उसकी माँ ने अपनी बेटी के हाथ झटक दिए थे और बोली थी, बस कर गुड्डी बस कर, और कितना गिरेगी तू? तूने पैसों के चक्कर में पैसों की चकाचौंध क्या देख ली, और ये साफ सुथरा कपड़े क्या पहन लिए, और मुंह धो लिया तो तू खुद को कहीं की महारानी समझ ना रही है? जानना चाहती है ना, मैंने तुझे काले रंग में पोत कर क्यों रख रखा था? वो मैंने तुझे इसलिए रख रखा था क्योंकि गरीबों की लड़कियाँ काली कलूटी बुरी ही अच्छी लगती हैं, बदसूरत ही अच्छी लगती हैं। क्योंकि अगर कोई भी लड़की खूबसूरत हो गई तो या तो वो किसी कोठे की शान होती है या किसी गरीब के बिस्तर की शान होती है, समझी तू? इसीलिए तुझे मैंने इस तरह से रखा था। लेकिन आज तुझे देखकर लग रहा है कि ये अमीर आदमी के हाथों अपनी इज्जत को तो गवा ही बैठी है, और अब यहाँ आकर हमें अपनी अमीरी रुबाब दिख रही है। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तुझे मैंने इसी दिन के लिए इसी ऐसे आदमियों से बचाने के लिए ही काली बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि कोई भी किसी बदसूरत बद्दी लड़कियों पर जल्दी से कोई नज़र नहीं डालता है, समझी तू? अपनी माँ की बात सुनकर उसे लड़की ने अपनी गर्दन झुका ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। तब अमित आगे बढ़ा था, उसने कहा था कि मैं आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। उसे अमित की बात सुनकर वो लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। तब उस लड़की की माँ बोली थी, लेकिन साहब, अगर आप इससे शादी करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ लेकर क्यों आए? आप शादी कर लेते, वैसे भी इसे हम लोगों को कुछ नहीं समझती है, इसके मन में हमारे लिए इतनी सी भी प्यार मोहब्बत नहीं है। ये बात हमें बहुत पहले से ही पता थी, हम तो वैसे ही बीमार रहते हैं, हमें केवल अपने दोनों बच्चों की फिक्र है, और जैसे ही ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, अगर हम मर भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे बेटे भीख मांगकर या कुछ ना कुछ कर अपना गुजारा कर ही लेंगे। उनकी बात सुनकर काली शक्तियों का मालिक अमित जोरों से हंसने लगा था और बोला था, ये बुढ़िया, तुझे क्या लगता है तू कब से मेरे सामने कचर कचर करती जाएगी तो मैं तेरी सब बात सुनता जाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तेरी बेटी से मैं शादी मना रहा हूँ, और यहाँ मैं तुझे दौलत और पैसे देने आया हूँ, आया हूँ तेरी बेटी के बदले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके बाद अपनी बेटी को ढूंढते हुए मेरे आगे पीछे घूमो, समझी तुम? और आज के बाद ये तुम लोगों से मिलने नहीं आएगी। और हाँ, तभी ऐसा कहते हुए अमित ने सूटकेस खोलकर कितने सारे लाखों रुपए उन भिखारी के आगे रख दिए थे
और कह दिया था कि तुम अब इन पैसों को लो और अपनी गरीबी मिटाओ, जो करना है करो, आज से तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहकर अमित उस लड़की का हाथ, जिसका नाम गुड्डी था, उसका हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा था। गुड्डी ने एक बार भी पलटकर अपनी माँ, बाबूजी, अपने भाई बहनों की तरफ नहीं देखा था। वो तो अगर किसी को देख रही थी तो वो था काली शक्तियों का मालिक। अमित की सच्चाई का गुड्डी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। उसे तो अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ दौलत की चमक, शोहरत की चमक और अमीर आदमी की बीवी बनने की चमक। और वैसे भी वो अमित का घर देख चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि अमित का जो घर था वो कोई आम ईंटों पत्थर से बना घर नहीं था, वो एक मायावी घर था, जो जिस दिन अमित की मौत हो गई या उसकी शक्तियाँ उससे दूर हो जाएगी तो वो मायावी घर भी अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। गुड्डी के माता पिता उन पैसों को देख रहे थे तो दूसरे ओर अपनी जाती हुई बेटी को देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वैसे भी वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे, उनकी बेटी उनके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन गुड्डी अपने पिताजी और अपने माताजी को ताने मारने से बाज नहीं आती थी और कहा करती थी कि तुम लोगों ने हमें पैदा ही क्यों किया है, और मैं भिखारी की ही जिंदगी देनी थी तो क्यों मजे लिए, क्यों पैदा किया। वो इतनी ज्यादा गंदी लैंग्वेज यूज किया करती थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भिखारिन थी। उसके सपने शुरू से ही बहुत ऊंचे और बड़े थे और आज शायद उसके सपनों को पर लग चुके थे काली शक्तियों के मालिक अमित का साथ पाकर। कुछ देर गुड्डी के पिताजी और माताजी ने उन पैसों से अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन फिर जब उनकी नजरें अपने भूखे छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी तो फिर से उनकी अना के सामने उनकी मजबूरी जीत गई थी और उन्होंने उन पैसों को उठाकर अपने काम में उसे करने का डिसीजन ले लिया था। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा उन गहरी घने जंगलों में पहुंच चुका था और जल्दी ही उसे गुफा के अंदर चला गया था, जिस गुफा के अंदर उसने अपनी माँ को रखा हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया, वो ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसकी माँ गुफा के बीचों बीच आग जलाकर बैठी हुई थी और कुछ तप कर रही थी। जैसे ही विक्रांत की नज़र अपनी माँ पर पड़ी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसकी माँ एक गहरी अनुष्ठान में थी और वो इस वक्त अपनी माँ को परेशान नहीं कर सकता था। वो आया था वो इसलिए था ताकि वो करिश्मी जी के बारे में कुछ प्लान बना सके, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से अनुष्ठान में देखकर अब उसने वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था। उसके बाद जब एक बार अनुष्ठान शुरू किया करती थी तो वो कितने ही दिनों तक चलता रहता था। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। दोस्तों, एक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं।